آسمانی زمین به کیوان شما سمیہ سار پر مومن کی 101 گاتھا کل چلی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ہے آتما پر پدارتھوں کا کرتا تو ہے ہی نہیں, ان کو جاننے والی اپنی گیان پریائے کا کرتا اوشیہ ہے. یدپی یہ سامان کتھن تھا کہ گیان پریائے کا کرتا ہے, اب بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ راگ کا کرتا ہے کہ نہیں, پر پدارتھوں کو کرنے روپ پر پدارتھ میرے انکول پرنمن ہو ایسا راگ جو اس کو اتپن ہوتا ہے اس کا کرتا ہے کہ نہیں. دو بات میں پر کا کرتا نہیں ہے, ایک بات نکتی ہو گئی, پر اپنی گیان پریائے کا کرتا ہے یہ بات نکتی ہو گئی. اب اپن کو کیا لگتا ہے گیان پریائے کا کرتا ہے, اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ پر کو جاننے کی بات سویکار کی ہے. تو اپنی گیان پریائے کا کرتا ہے کا کیا مطلب ہے, گیان پریائے جو پرنمتا ہے وہ جانتا ہے, گیان پریائے کا کرتا کا ارتھ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے. تو کرتا ہے لکھا نا, جانتا کہاں لکھا, لیکن گیان پریائے کا کرتا کا ارتھ کیا ہے, مانے جاننا, گیان کی گیان جاننے روپ پرنمت ہوا ایسا جانتا ہے, وہ یہی اس کا کرنا ہے. تو ایک بات یہ رہ گئی بیچ میں کہ جو آتما کی تو ہے پریائے راگ, اور پر کے لکش سے اتپن ہوئی ہے اور ایک بھاو ہے, تو ان کا کرتا یہ آتما ہے کہ نہیں, تو اس کو دوسرے طریقے سے سرس اٹھاتا ہے. کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ گیانی جو جانتا وہ گیانی ہے, ایسا لکھا تھا نا کہ جو جانتا ہے وہ گیانی ہے, ایسا تھا نا, تو جو جانتا ہے وہ تو گیانی ہے. تو پھر وہ اجیانی کی کیا پوزیشن ہے, تو وہ کہتا ہے گیانی ہے وہ تو نہیں کرتا ہے پر کو, کیونکہ وہ جانتا ہے اور اجیانی تو جانتا نہیں ہے, پر اجیانی کرتا ہوگا. کہ جان سمجھدار تو نہیں کرتے ہیں مریادا کا الگھن, لیکن جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو مریادا کا الگھن کرتے ہی ہیں. یہ ایسا ارتھ اس کے کہنے کا ارتھ ہے کہ اجیان, کچھ لوگ تو اپنی بھاشا میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ اجیانی تو کر سکتے ہیں نا, کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کا ایک ہی ارتھ ہے ویسے, لیکن ان کو کر سکنے میں ایک ادھیکار محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم تو کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں, ایسا لگتا ہے ہم کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں. اس میں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں تو ہم اپرادھ کرتے ہیں, ہے نا, کرنا تو نہیں چاہیے پر میں کچھ, کہ ہم کرتے ہیں تو اپرادھ کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو ہماری شکتی ہے, وہ تو ہمارے پاور میں ہے بات. جیسے دونوں کا ارتھ تو ایک ہی ہے, وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اجیانی اپنے اس اجیان بھاو کا کرتا ہے, کون سا, جو اس نے کرنے روپ بھاو کیا وہ میں کر سکتا ہوں ایسی مانیتا کی, وہ اس مانیتا کا کرتا ہے. تو پر کا کرتا نہ جانی ہے اور نہ اجیانی. اب جانی اجیانی میں کیا رہا, گیان بھاو کا کرتا جانی ہے اور اجیان بھاو کا کرتا اجیانی ہے, نیائے ہو گیا. اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ راگ تو دونوں کے ہوتا ہے, جانی اور اجیانی کے دونوں کے, کیونکہ راگ تو دسویں گن استھان تک جاتا ہے, اور بھی بہت سی کسائیں ہوتی ہیں, 25 کسائوں میں سے چار ہی تو گئی, 21 کسائیں تو ہوتی ہیں نا, تو اتنا راگ دیش تو وہ کرتا ہے. اور اجیانی کو کہہ رہے کہ کرتا ہے और ज्ञानी को कह रहे कि वो करता नहीं। और तर्क क्या दे रहे मतलब, क्योंकि वो मानता है कि मैं करता हूँ इसलिए वो करता है, और वो मानता है कि मैं नहीं करता हूँ इसलिए वो अकरता है। तो एकदम लचर तर्क दिखता है क्या, कि खूब करे करे जाओ और मानो नहीं बच्चे तुम, और मानने से तुम करता हो जाओगे, उसका बंद होगा, भोगना पड़ेगा, और खूब करे जाओ मानो नहीं और तुम अकरता हो जाओगे। ज्ञानी और अज्ञानी के जो जो अंतर है इसके बारे में, जो इस तत्व ज्ञान की धारा को पसंद नहीं करते हैं वो लोग यही तर्क देते हैं कि तुम वही राग करो तो तुम अकर्ता हो, और हम वही राग करें तो हम उसके करता, ये तुम्हारा ये अलग नाप नहीं है। तो ज्ञानी की बचत करते हो राग वही अपराध करते हुए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना अपने यहां कि देखो भैया पंडित जी तो हम तो रात को इसलिए खाते हैं कि हम जानते नहीं है कुछ, अब आप तो समझदार है ना, सब जानते हो ना, अगर आप क्यों खाते हैं? मैंने कहा भैया एक बात बताओ तुम कि रात्रि में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए इस बारे में तुम कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? ये तो जानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो तुम कहां कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि हम नहीं जानते? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बसा है कि नहीं जानने वाले को वो खाने का अपराध माफ हो जाता है, कि कर्मबंध की प्रक्रिया में तो ऐसे भी माफी की जगह है ही नहीं, फिर बिना जाने खाएंगे उन्हें पाप नहीं लगेगा, और जो जान के खाएंगे उसे पाप नहीं लगेगा। क्यों? फिर भी वो ऐसा भेद डालता है और हमेशा ये उपदेश देता है भैया अब हम तो उनको समझते नहीं है, बिना पढ़े लिखे हैं, अब इसलिए हमारे यहाँ तो चलता है, कि तुम तो बहुत समझदार हो पढ़े लिखे हो तुम्हारे यहाँ क्यों चलता है। तो मैं उनको ये कहता हूं कि ज्ञानी और अज्ञानी में दो ही यदि मान लो खाते हैं, समझना खाते तो नहीं घबराना नहीं, लेकिन एक तर्क के लिए तो उनका उसके लिए ले लो कि जो ज्ञानी की भूमिका में जो खाना संभव है उस पदार्थ का, क्या क्योंकि ज्ञानी खाते हैं तो फिर वो दूसरी बात का विचार गलत होता है ना, इसलिए मैं उदाहरण को सुधार रहा हूं। वो क्या कहते हैं हम खाते नहीं है तो तुम्हें डबल पाप है, किनको? अज्ञानियों को, एक नहीं जानने का और एक खाने का, नहीं जानना भी तो पाप है ना, और उन्हें एक पाप है जानने का है नहीं है, और नहीं जानने का और खाने का है। अब देखो कैसा कैसी बात करते हो आप, एक आदमी छत से गिरे और उसे पता नहीं हो, एकदम पैर फिसल जाए और गिरे, और एक आदमी बड़ा जानबूझकर गिरे, तो दोनों को चोट तो बराबर ही लगेगी ना, तो ऐसा भेद क्यों डालते हो आप? तो ऐसा नहीं है, चोट बराबर नहीं लगेगी, वो जो जान के जान कर गिरेगा तो बीजा संभल के गिरेगा, पैर के बल गिरेगा, उसका माथा नहीं फूटेगा, और तुम अजाने में गिरोगे तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप समझे ना। इसलिए वहां भी तुम अज्ञान का पोषण करना चाहते हो तो वो बात नहीं है। फिर वो कहते हैं जहर खाए, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, तुम मरेंगे तो दोनों ही ना। तो पहला तर्क तो मेरा ये है कि तुम जो अज्ञानी को सुविधा चाहते थे वो सुविधा तो खत्म हो गई, कि वो जानता नहीं है इसे थोड़ा उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्यों वो तो खत्म हो गई ना, कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही मरेंगे, समझिए ये तो तुम्हारा ही तर्क है कि जब तो जहर खाएगा तो दोनों ही मरेंगे, इसलिए अज्ञानी को तो कोई सुविधा उसमें मिलने वाली है नहीं, उसे भी वो दंड मिलेगा ही मृत्यु का। अब ज्ञानी कहते हैं कदाचित नहीं भी मरे, अब इस यहां पर बहुत अन्याय लगता है लोगों को, अब मैं क्या करूं समय सार में लिखा है ना, कौन सी कहता है विश्व में मुग हो जंतु दैजो पुरुषो न मरण मुगे आदि, कि विष खाता हुआ जैसे वैद्य मरता नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी कर्मों के फल को भोगता हुआ बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो ये उदाहरण लोगों के गले नहीं उतरता है कि विष खाता हुआ वैद्य कैसे नहीं मरेगा। कैसे ऐसी कोई सुविधा दे रखी है ना भैया, तो विष खाने खाने में फर्क है। ये दवाइयां भी बहुत सी विषों से बनती हैं। ये सांप का विष इतना महंगा बिकता है क्योंकि उनसे दवाइयां बनती हैं। पर एक सिद्धांत है कि विष होता विष से निर्मूल, क्या उसका प्रतिबंधक विरोधी विष चाहिए ना। तो बहुत वैद्य पुरुष, वैद्य माने वो डॉक्टर वाला वैद्य, वो जानता है कि इसे कितनी मात्रा खाना, कब खाना, किस बीमारी में खाना, किस अनुपान के साथ खाना, तब वो मरता नहीं है और लाभ होता है उसे। और ये तो ताजा सा खा जाता है इसलिए ये मरता है। ये दो जो अंतर हैं इसकी समझ में नहीं आता है। फिर लिखा वो मद्य शराब नहीं चढ़ती है, एक गाथा ऐसी भी है, अरति भाव से पीने वाले को जैसे नशा नहीं चढ़ता है शराब पीने से, और रति भाव से पीने वाले को चढ़ता है। जो नशा चढ़ाने के लिए पीता है उसे चढ़ता है, और जो नशा चढ़ाने के लिए नहीं पीता है उसे नहीं चढ़ता है। वो भी लोगों के गले नहीं आता उतरता। जैसे न चारी ने इसके लिए एक उपाय निकाला तो उन्होंने कह दिया जो सांप काटे दोनों को, तो कहते एक के पास प्रतिबंधक शक्ति है, उसको वो कर देती है नॉर्मल। प्रतिबंधक मंत्र की शक्ति से अमोघ मंत्र लिखा है उसको नहीं चढ़ता, ऐसा ऐसा शब्द डाल दिया, जहर नहीं चढ़ता उसको अमोघ मंत्र की शक्ति से, वो जहर को सेवन करता हुआ भी है ना। ऐसे दोनों ने कुछ कुछ किया है उदाहरण में सुधार, क्योंकि अज्ञानी लोग नहीं रहा, हम कैसे मान सकते हैं। कुंद कुंद ने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, कुंद कुंद के सदस्य तो बहुत सरल थे, उनको ऐसा झंझट नहीं था, उन्होंने कहा तो वो समझ में आ जाता था जल्दी, बुद्धिमान भी थे। अब धीरे धीरे कुटिलता बढ़ती गई ना। तो अभी जो यहां अपना मूल मुद्दा है कि वो रागादिक को करता हुआ ज्ञानी बनता नहीं है, रागादिक होते हैं ना इसलिए करता कहते, और एक जगह रागादि रूप परिणमता ऐसा लिखा भी है ना समय सार में, लेकिन ये राई की ओट में पहाड़ है। और मैं इस पर इतना वजन इसलिए दे रहा हूं कि कोई पंडित नहीं बताता है जो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ मुझे बता, ज्ञानी नहीं बनता था क्योंकि वो सब करता नहीं बनता, तो कहता है बनना नहीं बने उसके हाथ में परम तो रहा है, क्या मैं करता नहीं बनूंगा ऐसे मुझे बनेगा नहीं, करता बनूंगा तो बन जाएगा और बनूंगा माने ऐसी बातों में। लेकिन वास्तव में जिस राग की ये बात है वो राग ज्ञानी की है ही नहीं, ये अनंतानंदी संबंधी राग की बात है। जो राग ज्ञानी के है उसकी बात नहीं है ये कोई नहीं कहता है। मैं कई दफे कह चुका हूं फिर भी लोगों का ध्यान इधर नहीं जाता है, ऐसा कहूंगा तो भी नहीं जाता है। क्या पूरे तन्मय वाला मामला है ना कि तन्मय का उपयोग किए एकाग्रता नहीं है, ऐसे ही ये मामला है। ये राई की ओट में पहाड़ है, तो अनंतानंदी राग और मिथ्यात्व को भी राग कहते हैं, तो मिथ्यात्व अनंतानंदी राग नहीं है इसलिए ये उसको बंद नहीं करता है, ऐसा कहा है ही नहीं वो राग, उसका कर्तव्य क्या होगा वो। और अज्ञानी के वो राग है, वो कहते अज्ञानी बनता है मानो उसी राग के कारण तो बनता है राग, माने वो मिथ्यात्व संबंधी मान्यता, वो अनंतानंदी राग कि जो ऐसा मानता है कि मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। तो बाकी का राग है, कहते वो श्रद्धा की दृष्टि से जब कथन होता है उसे राग गिनते ही नहीं। और जब चारित्र मोह की संबंधी बात आएगी तो उसके एक एक पाई पाई का हिसाब उससे लिया जाएगा। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा माने क्या, कि जिस गुण स्थान में जितना बंद होगा उतनी प्रकृति बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी, उतने अनुभाग बनेगा, स्थिति बनेगी बराबर। बहुत बारीक हिसाब करुणा नियोग में बताया है। यदि वो बंधता ही नहीं होता तो चौथे गुण स्थान से चौदह गुण स्थान तक जो कर्म की बंधक प्रकृतियां होती हैं, तो उनका ये डिटेल इतना बनने का क्या मतलब था, है ना। तो जो मूल मुद्दा है हम उसको भूल जाते हैं, जिसमें एक सेकंड में जिसका जवाब निपट सकता है, हम उसको पकड़ के और बाकी के राग का आकर्ता सिद्ध करने में लग जाते हैं, जबकि वास्तव में उसका आकर्ता है ही नहीं। क्योंकि जो जिस रूप भाव रूप परिणमित होता है वो उस भाव का कर्ता होता है। तो ज्ञानी की भूमिका में अप्रत्यक्ष अनादिक राग रूप वो परिणमित होता है तो वो उसका कर्ता होता है, और उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है और उससे तत्संबंधित बंध भी होता है। अब हमने क्या मान लिया कि नहीं नहीं बिल्कुल निर्बंध है, अब सिद्ध करो, तो तुम गलत मुद्दा को लेके बैठे हो, तो कब तक तुम उसको ठेला ठेली करोगे, आखिरकार तो तुम एक जैसे हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ऐसा दोनों पट्टी करते रहे बस, महावीर जी आया ना अंतर समझ में क्या कह रहा हूं। अब देखो अपन पढ़ते हैं, देखो इस गाथा में है ये सब बातें, जरा बारीकी से ध्यान दोगे तो है पढ़े। दम दम भाव शुभम, यही है ना, अज्ञानी चापी परभावस्य न कर्ता स्यात्। पर पदार्थों का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है, है ना। ज्ञानी तो है ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं है, मैंने कोई नहीं है। दम भावम सुहम असुहम करे दिया दास तस्य खलु कत्ता। निज कृत शुभ शुभ, निज कृत शुभाशुभ भाव का, हमने जो शुभाशुभ भाव किए उनका कर्ता आत्मा है। लिखा क्लियर लिखा या नहीं लिखा, ये भाव उसके कर्म है और वेदक है उनका आत्मा। अब देखिये शांति जी, आप ध्यान देना इससे जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ तो बहुत क्लियर शब्द में लिखा है कि अपने 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 द्वारा किए गए शुभाशुभ भावों का कर्ता आत्मा है, तो यहाँ कहाँ दिक्कत है। ज्ञानी के जो भाव हैं उनका कर्ता वो है, और अज्ञानी के जो हैं उनका कर्ता वो नहीं है। ये कह रहे इसमें तो, अज्ञानी के जो राग भाव हैं उनका कर्ता ज्ञानी है, ज्ञानी के, और अज्ञानी के जो राग भाव हैं उनका कर्ता अज्ञानी। क्लियर बात है ना। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी ज्ञानी जो कर्ता नहीं। अरे कहाँ है बताओ ना, गाथा में कहाँ है, है? गाथा तो बिल्कुल साफ कह रही है कि जो जिस भाव रूप से प्रणमित हुआ वो उसका कर्ता है। अब आगे कहेंगे ज्ञानी ज्ञान भावों का कर्ता है और अज्ञानी अज्ञान भावों का कर्ता है, तो तुमने तो यहां कहा था, तो कहते हैं मिथ्यात्व के सहित जो राग होता है उसको ही अज्ञान भाव कहते हैं, मिथ्यात्व के बिना जो राग होता है उसे अज्ञान भाव नहीं कहते। अब अभी सुन रहे ना बात है, उसे अज्ञान भाव नहीं कहते हैं, मतलब मद्दा तो वहां है और हम उसे यहां आड़ा देते हैं। देखो जिस आत्मा जिस शुभ अशुभ भाव को करता है उस भाव का वह वास्तव में करता होता है। अभी इसमें आत्मा ज्ञानी अज्ञानी का भेद आता है, डाले ही नहीं है, वो तो आगे डालेंगे जब देखी जाएगी। बेभाव उसके कर्म हैं और वेदक है उनका आत्मा, और आत्मा उनका भोगता भी है, जो करता है वो भोगता है। अब टीका पढ़ते हैं, टीका शांति से थोड़ा, टीका को कभी कभी गाथा बहुत सरल लगती है और टीका कथन हो जाती है। तो एक दफा तो विद्यानंद जी के मुख से ही निकल गया था कि अमृत चंद्राचार्य ने समय सार को और द्रूही कर दिया है। बैठे थे समझाने बैठे थे लेकिन और कठिन कर दिया है। मूल गाथा को समझना तो बहुत आसान है, देखो कितना साफ लगा, निजकृत सुभाषो भाव का कर्ता कहा है आत्मा, वे भाव उसके कर्म हैं, वे देखे उनका आत्मा। इसमें क्या कठिन आई है बोलिए? अब मैं तो न चाहिए कठिन कर दिया दूर ही। तो गुरुदेव बार बार इस बात को विद्यानंद जी के लिए याद करते थे कि देखो बेचारे अमृतचंदाचार्य ने कितना खोल खोल के स्पष्ट किया, मुझे कहते उसे और द्रोही कर दिया, और द्रोही कर दिया है। असलियत में क्या किया क्या है ऐसा, ये चक्कर क्यों, दो कमेंट्स क्यों दुलीचंद जी, ये दो कमेंट्स क्यों? असलियत में क्या किया है अमृतचंद ने, जो बात कुंद कुंद सीधी सहज भाषा में कहते हैं उसको वे तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हैं। और तर्क और युक्ति न्याय की भाषा है, समझे ना? और न्याय की भाषा है तो वो भाषा अपने आप में कठिन होती है। क्यों होती है कठिन? क्योंकि ये नियम है कि जब सामने वाले से बात करें तो उदाहरण नहीं दे सकते, और उदाहरणों से बात सरल होती है। अब उदाहरण तो दे नहीं सकते हैं, अब तर्क युक्ति से सिद्ध करनी पड़ेगी। तो न्याय की भाषा को समझेंगे उसी भाषा को समझेंगे। जब वकील जवाब दावा लिखता है तो वो लिख देता है कि जो पहला दावा हम पर किया गया है वो हमें अस्वीकार है, दूसरा भी अस्वीकार है, तीसरा भी अस्वीकार है, चौथा भी अस्वीकार है, पांचवा भी अस्वीकार है, और खत्म। अब सामने वाला कहता है तुमने मेहनत तो कभी करी नहीं और अस्वीकार ही कहना था तो पूरे ही कहते थे हमें पूरा दावा अस्वीकार है। एक एक धारा के लिए क्यों बोलते हो कि नहीं नहीं पूरे दावा में 5% यदि स्वीकार भी होता है ना तो उसे कहना पड़ता है। इसलिए भले ही हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है तो भी हम उनको 5 दफे वो अस्वीकार है अस्वीकार कहेगा। जब कहेगा तो रिपीटेशन सा लगता है और नई बात लगती नहीं है। अब उसमें उसको रहस्य है, जो बाद में बहस कर चीजें सिद्ध करना है। तो कोई ये नहीं कहेगा तुम तो ऐसा पहले स्वीकार कर चुके हो, ऐसा ना कह सके इसके लिए वो ऐसा करता है। तो न्याय की भाषा में ऐसा होता है क्या? देखो कैसे कि कांजी स्वामी ने शास्त्रों का अर्थ बदल दिया है और ये उसने दावा किया। हम जवाब देंगे कि ये आपका आरोप हमें अस्वीकार है। ये कहने कहते कि नहीं बदला है, क्यों ये कह दो ना कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो भाषा तो बदली है ना, संस्कृत की हिंदी तो की है ना, हिंदी की गुजराती तो की है ना। मैं तो कहेगा देखो ये बदला, तुमने कह दिया कि नहीं बदला है, तो देखो बदला है, संस्कृत में लगी थी तो हिंदी में बोल रहे हो। और कभी कभी भाषा में एक भाषा की दूसरी भाषा में भाषांतर करने में वो शब्द नहीं मिलते हैं। अब अंग्रेजी में समर्थन का कोई शब्द ही नहीं है, समर्थन नहीं कहना पड़े, राइट फेथ सही नहीं है, वो तो आत्मानुभूति है, वो फेथ मेथ का है। आप मेरा समझ में है ना? तो वो इसलिए वो भाषा न्याय की है, इसलिए वो कठिन लगती है। क्यों पंचांग होते हैं ना शिष्यों के लिए पंचांग, वही त्रिन अंग न्याय की भाषा में। तो वो उस उत्तर को इतनी से बात को सिद्ध करते हैं। और दूसरी ये है कि प्राकृत तो जनभाषा थी तो जल्दी समझ में आ जाती है हर एक को, और संस्कृत तो बराबर व्याकरण के नियमों में बंधी हुई बात थी, तो संस्कृत जो नहीं पढ़ा है उसी समझ में नहीं आएगी। तो दूसरी दिक्कत आपकी भाषा की है, इसलिए अमृतचंद आपको कठिन लगते हैं। लेकिन बात मजबूती से सिद्ध तो उसी से होती है ना। तो अपन पढ़ते हैं, यद्यपि आत्मा अचलित एक विज्ञान घर स्वाद बाला ही है, तथापि जो आत्मा, देखो अभी इन्होंने जो क्या कहा ऊपर, तो ये कहा था उनने आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है और निजकृत स्वभाव के भाव का कर्ता होता है। अब इन्होंने आत्मा की व्याख्या की और आत्मा का अर्थ किया तो तरकीब से क्या कहना कह जाता है कि आत्मा दो तरह के होते हैं। उन्हें तो बिना खोले कह दिया आत्मा दो तरह के होते हैं। देखो क्या कहा, यद्यपि आत्मा अचलित एक विज्ञानगत स्वाद वाला ही है, यद्यपि लगा करके, क्योंकि कुंद कुंद ने ये बात कही ना, यानी वो हमें स्वीकार है, क्योंकि यदि वो हर बात को ये स्वीकार कर दें तो उसमें लिखा है कि इनका नाम ये है, इनके बाप का नाम ये है, इसे भी स्वीकार कर देंगे। आपका नाम ये है कि हाँ साहब, आपके पिताजी का नाम यही है कि हाँ साहब, ये जब पूछता है जब उसके पास जो कागज है उसमें लिखा है क्यों, तो जबरदस्ती कोई गलत न हो जाए बाद में बदल न जाए उससे मुंह से कहलवाता है, जवाब दावे में भी लिखा है कि हाँ साहब मेरा नाम यही है तो भी जज पूछेगा, होता नहीं होता है, आप देखिए छह फेरे पढ़ने के बाद में भी वो पंडित पूछता है ना कि तुम्हें स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, अदालत में जाते हैं ना शायद शादी करने तो वहां भी जज सामने पूछता है, जबकि एप्लीकेशन इस बात की दी है, क्यों सब जानते हैं किसके लिए आया है, लेकिन फिर भी जज पूछता है और फिर जब और खोल खोल के पूछता है तुम किसी के दबाव से तो नहीं कह रहे हैं, पूरे होश आवास में तो हो, नशा में तो नहीं हो, उसमें लिखना पड़ता है कि ये रुक्का मैं आपको जो लिख रहा हूँ पूरे होशो हवास में लिख रहा हूँ और कोई प्रेशर मेरे पे नहीं है, ऐसा लिख देने के बाद भी वो जज पूछता है और उसी भाषा में आपको बोलना पड़ता है। जब हम अमेरिका से इधर आते हैं ना तो वो वहां जाकर ये पूछते हैं कि आपने ये सामान अपने हाथ से पैक किया है, किसी ने आपको कोई गिफ्ट तो नहीं दी है और वो गिफ्ट आपने बिना देखे प्रेस में नहीं रख ली है, कोई आदमी आपको किसी और अपने दोस्त को भेजने के लिए सामान तो उसने आके आपको नहीं दिया है और आपने ये सामान अपने होशो हवास में खुद पैक किया है, ऐसे प्रश्न हरेक से वो करते हैं और हम सबको जवाब देना पड़ता है, तो मालूम तो हमें सब है क्यों 2500 दफे जवाब दे चुके क्यों, लेकिन फिर भी जो उनकी भाषा उच्चारण ऐसा होता है अपनी समझ में नहीं आता है, और फिर कहो कि आप रटे रटाए जवाब दे दें हम कहा साहब हमने भी पैक किया, कोई नहीं चलता है? अब वो कहे ये आपका सामान दूसरे हमने ही पैक किया है, ऐसे किसी को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका सामान किसी दूसरे ने पैक तो नहीं किया, दूसरे ने पैक किया है तो हम कहे हाँ साहब तो मर गए, तो हम वो जानते हुए भी उसे नहीं बोल सकते, वो दुभाषिया को बुला करके और दुभाषिया हमसे पूछेगा, हम जो समझेंगे वो जवाब हम देंगे, अपना साथी भी दुभाषिया हो सकता है, कभी कभी अपनी साथी को नहीं मानते, वो जानते सामने वाला ट्रेन है, वो अपने मुंह से कहलवाते हैं और अपना आदमी बुलाते हैं और वो पूछता है जब जवाब देते हैं तब मानते हैं। अब आपको ऐसा क्यों है, क्योंकि वो ही बोल टोल कि साहब हमने ऐसा कह दिया था हम ये नहीं है वो नहीं है। जब वहां जाते हैं कस्टम में तो एक फार्म होता है दादा, उस फार्म में लिखना पड़ता है, उसमें लिखा रहता है आप में कोई खाने का सामान तो नहीं है, आपके पास कोई फल फ्रूट तो नहीं है, आपके पास कोई ड्रग्स नशे की दवाई तो नहीं है, अब कहते बराबर नहीं है कैसे लिख दें, और दो सेब रख ही लेती है चुपचाप, यदि वो हमें ऐसा बोल दें नहीं 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 और बाद में उनने खोल के देखा और दो सेब निकले आए तो सीधे जेल में जाओ है? अब इनसे कुछ कितना ही कहो कि तुम मत रखना कुछ ना कुछ,
तो अंदर कहीं ना कहीं घुसे गए
समझ में भेज रहे आप फंस गए। वो कह आपने ना कर दिया हमें निकले आपके बेटा कह रहे लिखित देना पड़ता है।
मैं कहा सब फेंक दो जितने भी हैं खा लिए वो खा लिए और बाकी सब यही फेंक दो
जहां जाएंगे वहां बहुत फल मिलेंगे। किसी के मेहमान बन के जा रहे हैं क्यों? लेकिन हिंदुस्तान की महिलाओं से ऐसे फेंके जाते हैं समझे न्याय की भाषा का ये स्वरूप है इसलिए आपको कठिन लगती है। देखो पढ़ो यद्यपि आत्मा अचलित एक विज्ञान घन स्वाद वाला ही है तथापि जो आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अभ्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुरुगल कर्म के विपाक की दो दशाओं द्वारा अपने विज्ञान घन स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप स्वशुभ भाव को करता है वह अज्ञानी आत्मा दो भेद कर दिए अज्ञानी आत्मा का भेद कर दिया। उस समय तन्मयता के कारण तन्मयता के अब तन्मयता क्या है बोलो इसका मैं इस शुभ भाव रूप हूं ऐसा उसमें एकत्व है उसका। अब ये असली शब्द है ये तन्मयता के कारण तो यही है ना हम तन्मयता का उपयोग किए क्या कहते उपयोग उसमें एकाग्र तो उपयोग ज्ञानी का भी हो सकता है और अज्ञानी का उपयोग दूसरी जगह हो ऐसा भी हो सकता है। हर जगह तन्मयता का वही अर्थ है जो मैं बताता हूं तो उस भाव उस तन्मयता के कारण कहा देखो भाव में व्यापक होने से वो तन्मयता मानता है इसलिए वो उसमें व्याप रहा है शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है और वह शुभाशुभ भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप होने के कारण उसका कर्म होता है। अब उन्होंने उसमें एक अज्ञानी आत्मा डाल दिया ना और अज्ञानी आत्मा आत्मा ही दो तरह के होते हैं तो उन्होंने अनादिकालीन मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो इसमें एकत्व बुद्धि रूप जो अज्ञान है उसके कारण वो उसको परिभाषित किया तो फिर आत्मा थोड़ी दो तरह के होते हैं वास्तव में तो पर्याय की तरफ से भेद है कहते ना कि भले विराजो नाथ सुनाया था कभी आपको तुलसी मस्तक जब नवे तब धनुष बाण ले हाथ। मुझे श्री कृष्ण को नमस्कार करने में कोई ऐतराज नहीं है वो कहते हैं कि मुरली बजाते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भले विराजे नाथ जब तुम ऐसा मुरली बजाते हो वैसे बैठे हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो फिर मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर सकता कि मुझे मुरली बजाने की तुम्हारी क्वालिटी ये मुसलमानों के हिंदुस्तान से भगा नहीं सकती ये तो उन्हें भी बैठा लेगी राव तुम भी सुनो शांति से वो धनुष बाण वाली जो क्वालिटी है ना क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के बहुत अत्याचार हो रहे थे तुलसीदास जी के जमाने में है? इसलिए उन्होंने कह दिया वो धनुष बाण वाले राम चाहिए मेरे को मुर्गी बनाने वाले नहीं लगते क्यों। और ये दिनकर ने इसी भाव को लेकर वो पंक्तियां लिखी हैं हिमालय के प्रति उनकी एक कविता है क्या है वो हिमालय से बात कर रहे हैं ये ऐसा मानते हैं उनके यहां कि पांचों पांडव जो दीक्षा लेके जो मतलब जो यहां से गए थे हिमालय की तराई में जाके चले गए थे फिर वहीं जाके तपस्या कर आगे जो कुछ हुआ वहीं से गए तो हिमालय से कहते हैं तू भेज न युधिष्ठिर को यहां हमें युधिष्ठिर की जरूरत नहीं है जाने दे उनको स्वर्ग धीर तू उन्हें स्वर्ग में चले जाने दे आराम से क्यों क्योंकि उनके धर्म के उपदेश की हमें कोई जरूरत नहीं है दे तो ये है ना क्या बोलते थे उनको धर्मराज तू रोक न युधिष्ठिर को यहां जाने दे उनको स्वर्ग धीर तू फिर हमें गांडीव गधा और लौटा दे अर्जुन भीम वीर तो हमारे गांडीव धनुष जो है अर्जुन का और भीम की गदा और उनके साथ में अर्जुन और भीम, इन दोनों को लौटा दिया। उनकी हमें जरूरत है इनसे लड़ने के लिए, तू तेरी जरूरत नहीं है, क्यों तू तो नहीं लड़ने की बात करेगा। तू भेज ना युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, तू फिर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, हमें इनसे लड़ने के लिए इनकी जरूरत है। ऐसी सुलझिया जी कहते हमें धनुष बाण की जरूरत है, हमें तेरे मुरली बजाने की जरूरत नहीं है। जब बहुत अन्याय हो रहे थे मुसलमानों के, तब राम की पूजा बहुत हुई धनुष बाण वाले, लेकिन बाद में फिर मेल मिलाप हो गया, अकबर आया, जोधा रानी से शादी कर ली, हिंदुओं को गले से लगा लिया, कोई हिंदू को मंदिरों को नहीं तोड़ेगा, जजिया कर माफ कर दिया, दोस्ती हो गई, अब वे धनुष बाण वाले राम गायब हो गए। अब क्या जरूरत है, जाओ तुम भी चले जाओ ने? अब तो तैन की बंसी बजाओ ना, इसलिए बंसी वाला पसंद हो गया, तो सब राग रंग में मस्त हो गए और बंसी वाले भगवान पूजने लग गए। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं बिल्कुल हिंदी साहित्य में लिखा है, इतिहासकारों ने इस सत्य का लिखा है, मैं अपनी तरफ से कल्पना करके नहीं बता रहा हूं आपको। रीति काल आ गया, सारे कविराज दरबारों में पहुंच गए, इक्के दुक्के थे बनारसी दास जैसे, जो ये कहते थे कि संतन कहा सीकरी सो काम रे, अब समझ में आता है इसका, बोलो क्या है, नहीं तो सुना भी नहीं कभी, हिंदी साहित्य पढ़ते नहीं हो। संतन कहा सीकरी सो काम रे, सीकरी उस समय भारत की राजधानी थी, तो वो जो उस वक्त संत कवि थे जो बच्चे थे थोड़े बहुत, जैसे कबीर वगैरह संत कहलाते ना, जो बनारसी दास भी उनमें ही थे संत कवि, तो वे सारे कवि दरबार में चले गए, रीतिकालीन कवि केशव हैं ये सब चले गए राज दरबार में। अब वो इनको भी बुलाते थे राजा लोग, क्योंकि तो सबको खुश करना चाहते, सबको इनाम दो, तो कवि खुश हो जाए तो गांव गांव में हमारे गीत गाएंगे, बढ़िया हो जाएगा मामला क्या। तो उन्हें बुलाया तो कहते नहीं, संतन कहा सीकरी सो काम रे, संतों को सीकरी माने भारत की राजधानी से क्या लेना देना है, हमारे लिए तो जंगल ही ठीक है। आप सुने ना, जिन्हें पुरस्कार चाहिए हो लाख लाख के, बेजा के उनके दरबार में जाए, ये है इसका अर्थ, संतन कहा सीकरी सो काम रे, ये जो पंक्ति है उसका ये बहुत गंभीर। जैसे मान लो कि आज जो है ना, सब लोग पुरस्कार लेने के लिए और सबके पास दौड़े दौड़े फिरते हैं ना, होड़ सी लग रही है, हैं? ये गवर्नमेंट देती है पुरस्कार, तो उनको भी कोई कोई उनको मना कर देता हमें नहीं लेना है, तो वो ये बताते हैं कि ये पुरस्कार पुरस्कार तो उनको अपने विरुद्ध नहीं बोलने का घुक्की घूस है, तो हमको राजा बुला रहा है वो हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोले, भैया हम वैसे ही नहीं बोलेंगे, हमें कोई रस नहीं तुम्हारे विरुद्ध बोलने में, लेकिन पक्ष में भी नहीं बोलेंगे। इसका नाम है संतन कहा सीकरी सो काम रे। हाँ तो देखो आधा हुआ ना, अभी वह अज्ञानी आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव में व्यापक होने से शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है, और वह शुभाशुभ भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का व्याप होने से उसका कर्म होता है। अब इतनी सीधी सी बात थी, अज्ञानी आत्मा और रागा देख का कर्ता होता है, इतनी सी बात थी। अब उनने उनको इतनी तर्क भाषा में पांच लेन में कहा, अब बात तो उतनी सी है, अब वो तर्क युक्ति से सिद्ध किया, न्याय की भाषा में बात करी उनने। और वही आत्मा उस समय तन्मयता किसे उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता भी है, कर्ता भी और भोक्ता, और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव होने से उसका अनुभव होता है, भोग्य होता है। इस प्रकार अज्ञानी
पर भाव का कर्ता नहीं है। अब देखो निष्कर्ष क्या निकाला, यहां तो कर्ता होता है होता है, लेकिन अज्ञान भाव का और मूल क्या था ऊपर सबसे हेडिंग में कि पर का कर्ता नहीं है, और नीचे भी पंक्ति संस्कृत में है एवं अज्ञानी चापी परभाव से कर्ता न साथ, अज्ञानी भी परभाव का कर्ता नहीं है। ख्याल नहीं ना, ये निष्कर्ष निकाला। अब बात तो देखो गाथा में पढ़ो और तो टीका में पढ़ो क्या फर्क है। अब वो इतनी लंबी बात हो गई, सारे विशेषण विशेष भाव जिनकी भाषा कमजोर है उनको बहुत मुश्किल पड़ती है। वे जो गाथा का अर्थ बताया है ना पद्यानुवाद में बताया है, यदि वो उनको नहीं बताया जाए और ये अकेली टीका पढ़ाई जाए शांति जी, तो इनसे फिर पूछा जाएगा दो लेन में इसका भाव बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा, ऐसी दिक्कत है। हम ये जो है ना कितनी आठ पंक्तियां हैं ना, नौ पंक्ति हैं, इन नौ पंक्तियों को एक पंक्ति में बोलो है? इसे बोलेंगे समास से व्यास की, व्यास से समास की ओर, और एक पंक्ति को नौ पंक्तियों में लिखो उसको बोलेंगे समास से व्यास की ओर। तो ये इसकी स्टाइल है भाई, पद्धति है, तो पूरी सर्वांग बात करेंगे। आप जानते हैं भाषा दो तीन तरह की होती है, एक न्याय की भाषा बताई, अब काव्य की भाषा कैसी होती है, नाटक की भाषा कैसी होती है, क्यों वो कहेंगे आपका नाम क्या है हुकुमचंद, ये जवाब नहीं, अरे हुकुमचंद ये कोई बाक है, कैसे बोलना चाहिए न्याय भाषा, भाषा कैसे बोले, मेरा नाम हुकुमचंद भारिल्य है, ऐसा बोलना चाहिए पूरा। लेकिन नहीं, नाटक में ऐसा लिख दिया तो नाटक की नाक कट जाएगी, और न्याय में ऐसा लिख दिया कि हाँ तो ना उसकी नाक कट जाएगी। और हुकुमचंद तो बहुत मुश्किल उसकी नाटक में, आपका नाम हुकुमचंद है हूं भी नहीं बोले, नाटक में दृश्य काव्य है ना, तो वो देख रहा है ना सामने वाला, अब लिखने में वो गर्दन हिला दी वो कैसे दिखेगी गर्दन हिलाना दिखने में कैसे दिखेगा, समझ गया। तो नाटक की भाषा ऐसी होती है, उसको बोलते जिंदा भाषा। जिंदा भाषा क्यों बोलते हैं शांति जी, सोचो सोचो, बोलने की जरूरत नहीं, इसे जिंदा भाषा बोलते हैं रमेश, क्यों, जो एक्चुअल में बोली जाती है, जो जनता के द्वारा बोली जाती है वो जिंदा भाषा है, और जो व्याकरण के नियमों से बन गई जो किताबों में लिखी जाती है न्याय की भाषा, ये सब मुर्दा भाषा है, क्योंकि ये एक सांचे में ढाल करके ही इन्हें बोलना पड़ता है। अदालतों की भाषा, वकीलों को सिर्फ अदालतों की अंग्रेजी आती है, डॉक्टरों को सिर्फ दवाइयों की अंग्रेजी आती है, और सब अंग्रेजी में भी माहिर होने कोई जरूरी नहीं है, कवियों को साहित्य भाषा की अंग्रेजी आती है, न्यायशास्त्र वालों को न्याय की, बस ननुचे तथाई तदप्य सत है ये भाषा उनको आती है, दूसरों को नहीं आती समझ में, उसमें वे उसके माहिर होते हैं। देखो हो गया, क्या बात है भाई अपनी, पेज नंबर भैया क्या है बदल गया मेरा, पेज नंबर बताओ है 179। हाँ ये तो हो गया पूरा। उक्त टीका में यह बताया गया है कि यह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा भी जब अज्ञान के कारण सुभाषुभ भावों में व्याप्त होता है, सुभाषुभ भावों में तन्मय होता है, तो तन्मयता से उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप परिणमित होता है, तब वह उनका कर्ता भोक्ता होता है, किंतु पर का कर्ता भोक्ता तो तब भी नहीं होता। देखो यही किया है, वो जो नौ लाइन की भाषा थी ना, इसे अपन ने चार लाइन में बांध दिया और ये सरल हो गई, क्योंकि विशेषण हटा दिए, तर्क युक्तियां हटा दी, निष्कर्ष निष्कर्ष भावार्थ सारांश तात्पर्य कैसे लिखे जाते हैं, ये भी ट्रेनिंग लो, ये सोचो। कि वो लिखना है तो उसमें क्या छोड़ना और क्या लिखना, तो वो गाथा जैसे ही अर्थ लिख देते तो बहुत बढ़िया था ना, क्यों दो लाइन वाला, लेकिन दो लाइन वाला रहता तो फिर वो अमृत चंद्र का जो भाव कैसे आता, समझिए ना। अब तीन तरह का आपके सामने है, दो लाइन वाला, चार लाइन वाला और नौ लाइन वाला, एक ही गाथाकार है ना। मैंने बताया था आपको विदेश में हमारे एक डॉक्टर महावीर जी हैं जिन्होंने समय साथ गांव गांव में पहुंचाया अमेरिका में, 2100 समय साथ और 2100 छड़ाला का सार। वो कहते हैं मैं पहले आपका ये पढ़ता हूं, इस गाथा को पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले ये चार लाइनें पढ़ेंगे और फिर मैं और सब पढ़ता हूं तो मेरी समझ में आता है, और यदि मैं पहले से उस उन गाथाओं में टीका में उलझ जाऊं अमृत चंद की तो सिर में दर्द होने लगता है, और जब तक फिर वो अंत में आपकी पंक्तियां आती हैं तब तक तो इतनी अरुचि हो जाती है कि रख देते हैं अब कल पढ़ें। क्यों तो दुका जी, तो ऐसा करते ना कि चार पंक्तियां पहले लिख देते, नहीं लिख सकते, ये आपको ही कहना पड़ेगा है ना। हम भी चार पंक्तियां पहले नहीं लिख सकते, हमको तो उसका सारांश यह है कि हमको तो ऐसी भाषा में ही लिखना पड़ेगा, पहले वो पूरी बात उनकी प्रस्तुत करनी पड़ेगी, समझ ना। तो ये इसमें विशिष्ट है बात, मेरे कहने का अर्थ है ये जयचंद जी छाबड़ा ने बहुत बढ़िया भावार्थ लिखे हैं और अपन ने भी उनका खूब भरपूर उपयोग किया है और उनको उसी रूप में उद्धृत किया है, आप देखते ही किताब में ही है, लेकिन उन्हें हर गाथा पर नहीं लिखना जरूरी समझा, लेकिन हमने हर गाथा में कि उत्थान का जो अमृत चंद की है वो पूरी तरह नहीं रखी, लेकिन अपनी बनाई और निष्कर्ष भी अपना बनाया। लेकिन एक और देखना दादा, आप ध्यान से देखना कि उस जो उत्थानिका बनाई पूरी अपनी और उसमें जो अमृत चंद की उत्थानिका है उसको भी समाहित कर लिया, और कहीं कहीं फिर हमने ऐसा भेद डाला है कि वो जो अमृत चंद की वाक्यावली है उसको ब्लैक में कर दिया और अपनी जो वाक्यावली है उसको व्हाइट में रख दिया कि आपको छांटने में सुविधा रहे। कौन इतनी बारीकी से पढ़ता है, कौन देखता है क्या स्टाइल अपनाई गई है, यदि देख ले मैं गहराई से तो लेखक लेखक बन जाए ना, बात पूरी समझ लेते हैं लेकिन वो बात नहीं समझ पाते हैं कि इसमें यहां पर ऐसी भाषा को इस तरह से प्रयोग करने का पीछे क्या क्या उद्देश्य है, क्या थिंकिंग है, क्या स्वरूप है। इस प्रकार अब देखो और जी इन्हें फिर और ब्रेक में किया इसको, इस प्रकार अज्ञानी अपने शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान परिणमन का, देखो शुभाशुभ भाव रूप शुभाशुभ भावों का नहीं, शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान परिणमन, क्योंकि वो अनंतानुबंधी वाले शुभाशुभ भाव हैं वे ही अज्ञान परिणमन में आते हैं, और ज्ञानी उन्हें जानने रूप अपने ज्ञान परिणमन का करता होता है, किंतु पर का कर्ता ना तो ज्ञानी होता है और ना अज्ञानी ही, पर का कर्ता तो वही परद्रव्य होता है जिसका वह परिणमन है। आपको शायद याद हो शिविर में एक बात आई थी किसी के प्रवचन में, और मैंने उस वक्त उसका फिर कुछ बारे में मैं अंदर आने पर ही विकल्प कोई कमेंट्स नहीं किया, जरूरी था वास्तव में जनता के हिसाब से, क्योंकि वो अज्ञान लेके जनता चली गई, लेकिन फिर वातावरण में वो मजा नहीं रहता है इसलिए मैंने नहीं किया, आप लोगों को समझाने के लिए आज बताता हूं। ये बात आई थी आप लोगों को पता होगी तो आपको याद आ जाएगा किसने कब कही थी कि नहीं कही थी, कि मंद कसाय उसका नाम स्वभाव और तीव्र कसाय उसका नाम असंभाव है ना, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बात मैंने बहुत पहले जब वो कोल्हापुर का शिविर हुआ था ना और तुम्हारे मोती चंद आए थे कितने 40 साल पहले, तब भी मैंने इस बात को कहा था, तब से मैंने कई दफे स्पष्टीकरण किया है, क्यों
कि मंद कसाई भी अशुभ होती है, दूसरे को मारने का भाव मुझे बहुत मंद है तो क्या वो शुभ हो जाएगा? है तो मारने का लेकिन इतनी तीव्रता नहीं है, क्यों? और दूसरे को बचाने का भाव बहुत तीव्र है तो वो अशुभ हो जाएगा। शेर और सुअर लड़ पड़े थे ना एक मुनिराज की रक्षा के लिए और एक मुनिराज के खाने के लिए, तो दोनों ही एक स्वर्ग गया और एक नरक क्यों गया? क्योंकि कसाई तीव्र तो दोनों को थी, क्यों? तीव्र कसाई के बिना वो सुअर शेर से लड़ ही नहीं सकता था, वो रक्षा करने का भाव मंद होता तो सोचता ही रहता, जान की बाजी लगा के लड़ नहीं सकता था। तो इतनी तीव्रता, लड़ाई तो दोनों की एक सी हुई, घायल तो दोनों एक से हुए, लड़ते तो दोनों एक से ही दिखे, हिंसक और हत्यारे तो दोनों ही हुए। फिल्म बनाओ तो समझ में आई ना, लेकिन एक सुरग गया क्योंकि उसके शुभ भाव था। इतने शेर को मारने का भाव भी शुभ था, क्या कह रहे? और उसे सुअर को मारने का भाव महा अशुभ था। अब ये बात में उस दिन कहता तो तथ्य तो सबकी समझ में आ जाता, सबको स्वीकृत भी हो जाता, लेकिन दूसरे दिन शिविर में कैसा वातावरण हो जाता मैं जानता था, इसलिए मैंने फिर कुछ नहीं कहा, भी चुपचाप रहो, क्योंकि जिनमें अज्ञान ले जाएगा उनकी जिम्मेवारी तो उनकी है, मेरी नहीं है, और वातावरण खराब हो जाएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। तो महावीर जी है ना कितनी मजबूत, ऐसा हर मंद भाव हर मंद कसाय शुभ नहीं होती। पांच इंद्री के भोग भोगने का भाव शुभ है कि अशुभ? और बहुत मंद है तो मंद अशुभ होगा, शुभ कैसे हो जाएगा? और भगवान की भक्ति का भाव तीव्र है तो अशुभ हो जाएगा? तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का भाव तीव्र है तो अशुभ हो जाएगा क्या? इसलिए ये परिभाषा सही नहीं है कि मंद कसाय वो शुभ भाव, तीव्र कसाय वो अशुभ भाव। हाँ ये बात अलग है कि अधिकांशता मंद भाव कसाय शुभ होती है और अधिकांशता तीव्र कसाय अशुभ होती है, अधिकांश। लेकिन ये नियम थोड़ी है, अधिकांश के भरोसे तत्व प्रतिपादन नहीं होता क्या? देखो न्याय की भाषा कैसी है, एक मिनट में सब आ गए और सब नहीं आए, ये न्याय की भाषा है। बोलो इसका क्या अर्थ है? 100 आदमी बुलाए थे और 100 ही आ गए, इसका नाम सब आ गए। और एक आया तो अभी सब नहीं आए, और 99 आए तो अभी सब नहीं आए, ये भाषा है। और कितना फायदा वेस्टर्न न्याय की भाषा है, वेस्टर्न लॉजिक में ऐसा नियम है, एक आ वाक्य होता है, एक बड़ा वाक्य, ई वाक्य, आपने पढ़ी थी ना फिलोसफी ली थी ना लॉजिक, उसमें ऐसे वाक्य होते हैं कि एक सब आ गए एक सब नहीं आए, एक कुछ आ गए कुछ नहीं आए। तो कुछ आ गए माने 99 आ गए वे भी कुछ है, और एक आया वे भी कुछ आ गए, और कुछ नहीं आए एक नहीं आया तो कुछ नहीं आए, और 99 नहीं आए तो कुछ नहीं आए। समझे? अपन जो प्रयोजन है वो बात अपना सिद्ध नहीं होता, वो इस भाषा से बाहर नहीं निकलेंगे। एक आ बात, ई बात, ऊ बाक, ए वाक्य, बी बाक, सी बाक, डी बाक, ऐसे वाक्य हैं उनके यहाँ, और नक्की है आपको उन्हीं भाषा में बोलना पड़ेगा, उसी भाषा में बात प्रस्तुत। इस प्रकार अज्ञानी अपने शुभाशुभ भाव रूप अज्ञान प्रणमन का और ज्ञानी उन्हें जानने रूप अपने ज्ञान प्रणमन का करता होता है, उन्हें जानने रूप ज्ञान प्रणमन का। और वो शुभाशुभ भाव रूप कौन वे? अनंतानंदी वाले। किंतु पर का करता तो न ज्ञानी होता है और न अज्ञानी ही। अब देखो यहाँ शुभाशुभ दोनों एक साथ लिखिए, ऐसा शुभ भाव करने वाला ज्ञानी और अशुभ भाव करने वाला अज्ञानी ऐसा नहीं लिखा। अज्ञानी के भी अशुभ भाव हो सकते हैं
और ज्ञानी के भी स्वभाव, ज्ञानी के भी अशुभ भाव हो सकते हैं और अज्ञानी के शुभ हो सकते हैं। पर का कर्ता तो वही परद्रव्य होता है जिसका वह प्रणमन है, जिस द्रव्य का जो प्रणमन है उसका कर्ता वो ही है। अब यहाँ पर निष्कर्ष की बात यह है कि हम एक सिद्ध करने चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब राग का कर्ता है कि नहीं है, यहाँ ये मुद्दा नहीं है। तुमने पूछा तो हमने बता दिया, अमृतचंद्र ने खोल दिया, लेकिन उद्देश्य क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो अशांति जी, यदि यहाँ पर कोई आदमी राग का कर्ता नहीं है इस पे वजन देता है और पर का कर्ता नहीं है इस पे वजन नहीं देता है, तो वो इस गाथा का अर्थ सही नहीं करता है। दादा समझ में आई कि नहीं आई? ये निष्कर्ष का मतलब ये है क्या? उत्थान का में भी निष्कर्ष है और संस्कृत की अंतिम पंक्ति में भी निष्कर्ष है। ऐसे ही है ना, 308 से लेकर 311वीं गाथा तक, अतो अकर्ता अवतिष्ठते अंत की पंक्ति और शुरू की अब दृष्टान्त पुरुषरम अकर्तृत्व साधयति। अब दृष्टान्त पूर्वक अकर्तृत्व सिद्ध करते हैं, तो आपको अकर्तृत्व निकालना चाहिए उसमें से। और भाषा कैसी है? जीव भी अपने कर्म नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, तो करते हुए, भाषा कैसी है? करते हुए। और अजीव भी अपने क्रमबद्ध परिणामों को रूप परिणमित होता हुआ, अजीव ही ये जीव नहीं, तो वहां तो परिणमन होता हुआ, देखो लिखा ना। लेकिन निष्कर्ष क्या है? हम सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा करता है, या सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा पर का करता नहीं है, ये निष्कर्ष आना चाहिए। वो निष्कर्ष नहीं आना चाहिए, तो ये निष्कर्ष लिखने की पद्धति है। इस बात को आप अच्छी बारीकी से पढ़ेंगे तो फिर इसकी टीका की भी महिमा आएगी, एक एक वाक्य की ख्याल में आएगा कि इसका क्या महत्व है, और जो इसमें है वो अन्यत्र नहीं है, जैसा आता है ना ख्याल में आता है।